Hare Krishna. We want to welcome our group of visitors from England. From all of England. So, we're very happy to have you as our guest today. I understand you all saw the museum. You don't like the museum? Basically, our philosophy is very simple. We teach everyone a path how to be happy. And we encourage everyone to glorify the Supreme Lord. And you can find real happiness by glorifying the Supreme Lord. You all have any questions? No. So thank you very much. We do right? That's okay. Hare Krishna. Can we do one more bhajan quickly? Because they were waiting in English, so I just didn't want to. Hare Krishna. We're getting a lot of tourists now in the museum. Yaso Madinandana Rajabaro Nagana Gokula Ranjana Kana. Yaso Madinandana Rajabaranajana Gokula Ranjana Kana. Gopi Paranadana Sadhana Manohara. Gopi parana dana madana anohara. Kalya damana vidhana. Kalya damana vidhana. Amala Hari Nama Me Abhinasa. Amala Hari Nama Me Abhinasa. Vibhinna Purandhara Navani Naganava Bhanti Padham Suvasa. Vipinna Purandhara Navani Nagharava Kanti Badham Suvata. Braja Jana Palana Surakulana Sana. Braja Jana Palana Surakulana Sana. Nanda Godana Rakhovala. Nanda Godana Rakhovala. Govinda Madhava Navanita Tatkara. Govinda Madhava Navanita Tatkara.
Sundarananda Gopala. Sundarananda Gopala. Tamna tata jara gopi patana hara. Dhamna tata chara gopi basana hara. Nasa rasika kripa moya. Nasa rasika kripa moya. Sira dava nabha bhunda manna nasvara. Sira dava nabha bhunda manna nasvara. Bhakti venada chaya. Bhakti venada chaya. Yatamati nandana bhajavaranana Gokunaranjana thana. Gopi parana dhanna madana manohara Kalyadamana vedhana. Amala harina bhame abhilasa. Govinda madhava navanita taskara. Shri radhava nabha bhindavanna nagbara. Bhakti vinada chaya. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Shripad Paramahansa Prabhupada Satavasara Sri Srimad Vijayan Gaisala Ove Chandra Bhakti Danda Swami Shaprabhupada Maharaj Ki Jaya Om Shripad Paramahansa Prabhupada Gacharya Vijayan Gaisala Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj Ki Sri Sri Gauratai Ki Sri Sri Radha Partha Sati Dalita Vishaka Ki Sri Sri Sitaram Lakshman Hanuman Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna. Aap sab bhaktan ka hardik swagat. Aap sabko SMS dwara suchna prapt hui thi. भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि जो भौतिकवादी हैं वो टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए और भक्त लोग उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं भगवान के सेवा में. एक समय था अगर आप प्रभुपाद जी के सारे हजार टेप रखना चाहते थे तो आपको एक पूरी अलमारी चाहिए थी इन टेप्स को रखने के लिए। आज MP3 आ गए हैं, ओके, मैच बॉक्स इतने बड़े जिनमें आप 7,500 टेप रख सकते हो और भी टेप कर सकते हो। तो भक्तों का भाव रहता है कि हर प्रकार की सुविधा का लाभ उठाना, पर किस लिए? भगवान की सेवा में। भौतिकवादी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं गलत कार्य के लिए, और भक्त हर सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं भगवान की सेवा में। तो केवल आज दोपहर को ही निर्णय किया था कि शाम का लेक्चर होगा और आप लोगों को सूचना काफी जल्दी पहुंच गई। तो ये जो श्लोक हमने लिखा है बोर्ड में, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, शायद आप लोगों ने कईयों ने श्लोक कंठस्थ भी किया होगा। तो श्लोक का उच्चारण कीजिए मेरे बाद। मन मना भाव मद भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु मां वाचस्पती सत्यं ते सतीजने प्रियोशिमे। मन मन भाव मद भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु मां वाचति सत्यं ते प्रतिजने पिहोषि मे। मन मन भाव मद भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वाचति सत्यं ते प्रतिजने प्रियोषि मे। माता जी
शब्दार्थ मत मनाहा मेरे विषय में सोचते हुए भव हो मत भक्त मेरा भक्त मद्याजी मेरा पूजक माम मुझको नमस्कुरु नमस्कार करो माम मेरे पास एवं ही एष्यसि आओगे सत्यम सच सच ते तुमसे प्रति जाने वायदा या प्रतिज्ञा करता हूँ प्रियः प्रिय असि हो मे मुझको। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, सदैव मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की ज्ञान का गुह्यतम नहीं मेरे पीछे नहीं ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो, वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उन कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में हैं। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, जैसे विष्णु नारायण राम वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंत है, जिसका प्रतिकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वे कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा हैं।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञातनंदस्य ज्ञानञ्जनोऽशुनक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदावया ददाति स्वापनं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपां सगदा सहगना रघुनाथान्वितं तं सदैवं साद्वैतं सुमधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं रालागमं तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पंचाकल्पतव्यश्च शिवा सिंधुमेव च परितान पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
हरे कृष्ण। वैसे तो आप जैसे आप जानते हो आपके लगभग इस्कॉन के हर मंदिर में शाम के समय गीता की क्लास होती है, और हमारे जीता मित्र प्रभु हमेशा शिकायत करते हैं कि जितनी संख्या में भक्तों को आना चाहिए गीता सुनने के लिए उतनी संख्या में आप लोग नहीं आ पाते। ये चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश था कि हमें रोज भागवतम भी पढ़ना चाहिए और भागवत गीता। कई बार भक्तों के मन में विचार आता है गीता दैट इज वेरी सिंपल बुक है ना, उसमें खाली कक है, हमें तो कोई खास रासलीला या कोई रास के विषय में हम ध्यान प्राप्त करना चाहते हैं। पर अगर आप गीता और भागवत को ही समझ लो ध्यान से तो इसमें आपको हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
गीता में बड़े स्पष्ट रूप से भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार से हम उनके शरणगत हो सकते हैं। और इस 18वें अध्याय में गीता का सार प्रस्तुत हो रहा है और इस अध्याय में भगवान फिर से एक बार इस विषय पर बल दे रहे हैं कि भक्तियां मम अभिजानंती, कि भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम मुझे समझ सकते हो। चैतन्य महाप्रभु जी ने गीता के संदेश को बहुत बल दिया और चैतन्य महाप्रभु ने कुर्मा ब्राह्मण से कहा था, जहां भी तुम रहो गीता को रोज पढ़ो और भागवतम, भागवतम के प्रथम स्कंद में आप पढ़ते हो कि जब भगवान अप्रकट हो गए थे तो अर्जुन उनके सनातन साथी अत्यंत दुखी थे। फिर अर्जुन ने भगवान के गीता के उपदेश का स्मरण आरंभ किया। जैसे ही उन्होंने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया उन्हें ऐसे लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित थे और उनकी निराशा बेचैनी शोक समाप्त हो गया। तो प्रभुपाद जी इस कथा के तात्पर्य में समझाते हैं, जैसे अर्जुन ने गीता के श्लोकों का स्मरण किया और उन्हें ये अनुभव हुआ कि परम भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं, उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने कहा हम सब भक्तों को गीता के श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। पर अगर आप गीता के श्लोकों का स्मरण करोगे ध्यान से तो आपको क्या महसूस होगा, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण आपके समक्ष खड़े हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अर्जुन का तो सौभाग्य था कि उन्हें परम भगवान का की संगत प्राप्त हुई, परीक्षित महाराज का सौभाग्य था कि उन्हें शुक्रदेव गोस्वामी जैसे महान संत मिले, पर कहां है शुक्रदेव गोस्वामी आज और भगवान कहां है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर आपका सौभाग्य हो कि आप कृष्ण भगवान के भक्त द्वारा आपको यह संदेश मिले या शुक्रदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि द्वारा यह संदेश मिले तो आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो कि अर्जुन को प्राप्त हुआ या परीक्षित महाराज को प्राप्त हुआ। आप श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में देखते हो कि भीष्म देव जी जब अपने शरीर को त्याग रहे थे तो स्वयं भगवान आए सारे देवता पांडव भाइयों के साथ और भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए भीष्म देव ने अपने शरीर को त्यागा। तो अगर किसी भक्त से पूछा जाए कि आप भी क्या चाहते हो कि जब आपके शरीर त्यागने का समय आएगा आपको भी भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हो, तो मेरे ख्याल से आप सब कहोगे ये आपकी भी इच्छा है, सच बात है। पर अगर आपसे आगे पूछा जाए आप क्या सचमुच सोचते हो कि भगवान स्वयं आएंगे आपके पास जैसे कि वो आए थे भीष्म देव के श्री त्यागने के समय, तो आप क्या कहोगे, नहीं। पर है उत्तर है हाँ, अगर आप भगवत गीता को सुन रहे हो और हरि नाम को जाप कर रहे हो तो फिर आपको भी वही लाभ मिलेगा जो कि भीष्म देव जी को प्राप्त हुआ। तो गीता हमें बड़े ध्यान से रोज पढ़ना चाहिए। आप चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु जी की दक्षिण भारत की यात्रा के विषय में पढ़ते हो किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे दूर दूर से लोग आते थे उनके हरि नाम संकीर्तन मंडली का दर्शन लेने के लिए और उनको देखते ही प्रभावित हो जाते थे, हरे नाम का जप करते थे, और जो जो जब वो अपने गांव में शहरों में वापस लौटते थे तो दूसरे व्यक्ति उन्हें देखकर भी हरे नाम का जप आरंभ कर देते थे। तो इस यात्रा के दौरान चैतन्य महाप्रभु जी श्री रंगम के मंदिर में गए थे, जहां की एक अनपढ़ ब्राह्मण रोज गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण कर रहा था, और उच्चारण करते समय शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा था, जैसे नेत्रों से आंसू बहना। तो चैतन्य महाप्रभु जी समझ गए थे कि ये ब्राह्मण शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रस्तुत कर रहा है, और चैतन्य महाप्रभु जी ने इस ब्राह्मण से पूछा कि गीता में क्या है जिसके कारण तुम ये शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रस्तुत कर रहे हो, और फिर इस ब्राह्मण ने पूरी कथा सुनाई कि उसके गुरु ने उसे आदेश दिया था कि आप रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करो, और क्योंकि वो अनपढ़ था कई श्लोकों का उच्चारण वो ठीक कर पा रहा था और कईयों का गलत, और कई श्लोकों का उसे अर्थ भी समझ नहीं आ रहा था। जब भी क्योंकि गुरु का आदेश था वो रोज 18 अध्यायों का उच्चारण कर रहा था, और जब वो भगवान कृष्ण के श्लोकों को उपदेश को पढ़ता है, जब उन्होंने देखा कि परम भगवान अपने भक्त के रथ को चला रहे हैं, जब वो गीता के श्लोकों का स्मरण करता है तो फिर उसे उसके नेत्रों से आंसू बहते हैं, यानी एक शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रस्तुत होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए, और क्योंकि एक ब्राह्मण अनपढ़ था और गांव के लोगों को पता था ये अनपढ़ है, तो कई लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे, कहते थे देखो पंडित बन गया है अनपढ़। और जब भी क्योंकि गुरु का आदेश था नियमित रूप से वो रोज गीता पढ़ते थे, और इसका क्या परिणाम हुआ कि उन्हें स्वयं भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं भगवान। चैतन्य महाप्रभु जी इतनी कृपा की कि 4 महीने के लिए उस ब्राह्मण को अपने साथ रखा और रोज गीता का अर्थ उसे समझाया। तो गीता का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम सब भक्तों को गीता को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम इन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवान देखते हैं कि हम उनके उपदेश को समझना चाहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं तेसाम सदयुक्त नाम भजतम प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि योगम तम ये न मम उपयंती थे। और फिर भगवान जो हरे के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, हमें बुद्धि देते हैं जिनके द्वारा हम उनको समझ सकें। इसलिए गीता का अध्ययन आवश्यक है, और अगर आप सब ये नियम बनाओ रोज गीता पढ़ोगे और भागवतम पढ़ोगे और साथ में तात्पर्य भी पढ़ना, तात्पर्य पढ़ना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तात्पर्य में आपको प्रभुपाद जी की व्याख्या के द्वारा भगवान के उपदेश को ज्यादा सरलता के साथ आप समझ सकते हो। तो इस प्रसिद्ध श्लोक में, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और कई बार भक्तों की इच्छा रहती है गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने के लिए, और जब वो चुनते हैं कौन से श्लोक, अक्सर ये श्लोक सबसे पहले नंबर में आता है। आप में से कितने भक्तों ने श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? ओके ओके, तो भगवान कईयों ने तो कंठस्थ किया हुआ है पर कईयों ने नहीं किया हुआ, जिन्होंने नहीं किया उन्हें इस श्लोक को कंठस्थ कर लेना चाहिए। हमारे एक खास करके विदेशी भक्तों में ये बड़ी इच्छा रहती है कि वो गीता के श्लोकों का स्मरण करें, तो क्या करते हैं वो टेलीफोन इंडेक्स के कार्ड आते हैं ना, उनमें रोज एक श्लोक लिखते हैं और वो एक कार्ड को अपने साथ रखते हैं संस्कृत और अनुवाद, और सारा दिन वो पढ़ते रहते हैं और इस प्रकार श्लोक भी कंठस्थ हो जाते हैं और इस प्रकार भगवान का स्मरण भी कर पाते हैं। तो आप सबको भी ये प्रयास करना चाहिए, आप चुन लो 50 या 100 श्लोक गीता के और रोज एक एक श्लोक लीजिएगा, फिर आप देखोगे कि आप सबके प्रचार की शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो भगवान इस श्लोक में हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? कह रहे हैं केवल चार चीजों को करो। क्या है वो? मनमना, मेरा चिंतन करो। फिर आगे क्या कहते हैं? मेरा भक्त बनो, मन याजी, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अगर आप इन चार चीजों का पालन करोगे तो अंत में क्या लाभ मिलेगा? भगवान कहते हैं बिना शंका के मेरे धाम में लौटोगे। भगवद गीता के छठे अध्याय का विषय है ध्यान योग, और इस अध्याय में भगवान इस विषय पर बल दे रहे हैं कि हमें अपने मन को बंधु बनाना है, शत्रु नहीं। और भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया वह हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा, और जिसने मन को नहीं जीता उसको चाहे आप सारे विश्व की सुविधा दो वह शांत रहेगा। आप भागवतम के 8वें स्कंद में वामन देव और बाली महाराज की कथा पढ़ते हो। वामन देव जी कौन थे? भगवान के अवतार। तो भगवान गए थे ब्राह्मण बालक का रूप ग्रहण करके बाली महाराज के यज्ञशाला में। बाली महाराज बड़े प्रभावित हुए थे और उन्होंने पूछा बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे पवित्र व्यक्ति आया है इस यज्ञशाला में, कुछ मांगो मेरे से। तो वामन देव जी तो भगवान है, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है? कुछ असंभव नहीं। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो उतना स्थान दो जहां कि मैं 3 कदम रख सकू। भगवान ने कहा, बाली महाराज ने कहा और मांगो, ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। धनी व्यक्ति के पास आकर इतनी छोटी चिड़की भी कोई थोड़ी मांगता है, और मांगो मेरे से। तो वामन देव ने कहा कि जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया हो उसको आप सारे विश्व का धन भी दोगे तो वो संतुष्ट नहीं रहेगा, और जिसने मन और इंद्रियों को वश में किया है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। इसीलिए आप भगवद गीता में पढ़ते हो अनेक स्थानों में भगवान इस विषय पर बल दे रहे हैं, क्या, मन को वश में लाने के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे आप सारे विश्व को प्राप्त कर लो, पर आपने अगर मन को वश में नहीं किया तो आध्यात्मिक परिवर्तन कठिन हो जाएगा। इसलिए बार बार, ये पहली बार नहीं, ये विचार गीता के अनेक श्लोकों में प्रस्तुत किया गया है कि मन को मन पर विजय प्राप्त करो। भागवत गीता के 8वें अध्याय का विषय है भागवत प्राप्ति, और वहां भगवान कहते हैं जहां व्यक्ति का मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का ध्येय व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, और जो मेरा चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है बिना शंका के मेरे धाम में लौटता है। तो भगवत में आप महाराज भारत की कथा पढ़ते हो, किस प्रकार भारत महाराज हिरण को खोजते खोजते उन्हें शरीर त्यागना पड़ा। तो इसलिए हमें मन को बंधु बनाना है, और मन को बंधु बनाने के लिए श्रवणम कीर्तनम के सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान पूर्वक होकर बकायदा हाई नाम का जाप करोगे और सुनोगे तो मन को पर विजय प्राप्त करना ज्यादा सरल रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं मन मना मेरा चिंतन करो। तो भगवान का चिंतन आप कैसे कर सकते हो? संत ने हमें अनेक उपाय दिए हैं, जैसे भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो कैसे, ये समझो कि मैं हूं अचिंत्य। अचिंत्य मतलब कि जिसे आप भौतिक बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकते। भगवान के लिए कोई कार्य भी असंभव नहीं। जैसे कि आप कथा जानते हो ब्राह्मण की और मोची की, जब ब्राह्मण को सूचना दी गई कि भगवान एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे, ब्राह्मण ने क्या कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? मोची अनपढ़ था, पर भगवान की असीम शक्तियों में पूरा विश्वास था। जब उसे कहा गया कि भगवान एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे, वो तो खुशी में नाचने लगा। और नारद मुनि ने परीक्षा लेने के लिए पूछा, क्या तुम्हें विश्वास करते हो ये संभव है क्या? तो उसने क्या कहा, तो भगवान एक बड़े वृक्ष को एक छोटे बीज में डाल सकते हैं, तो क्या एक हाथी को सुई के छेक से नहीं निकाल सकते? तो भगवान कहते हैं थिंक ऑफ मी एज वन हु इज इनकंसीवेबल। भगवान है अचिंत्य और सबसे पुरातन। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, भगवान के अनेक लीलाएं हैं। भगवान का उपदेश, जैसे हम कह रहे थे अर्जुन ने भगवान के उपदेश का स्मरण आरंभ किया, फिर भगवान के नामों के, आप जानते हो कि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, नामों के विषय में चिंतन करो। किसी न किसी रूप से भगवान क्या कहते हैं, मेरा चिंतन करो। आगे कहते हैं मेरा भक्त बनो। भगवत गीता में बार बार इस विषय पर बल दिया जा रहा है, मेरा भक्त बनो। देवताओं के नहीं, भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो कम बुद्धि के लोग हैं वो देवताओं की शरण लेते हैं, और असल में जो वर देवताओं द्वारा भी प्राप्त हो रहा है वो मेरे द्वारा ही आ रहा है। दूसरे शब्द में भगवान कह रहे हैं देवताओं देवियों की बजाय मेरी शरण में आओ, मेरी उपासना करो। शास्त्र में कहा गया है चेतन चतुर्मित में एकला ईश्वर कृष्ण और सब मृत्या, एक ही है परम भगवान और आप सब बाकी सब जो है मेरे सेवक हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त बनो। भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम सोयम यो में भक्तिया प्रयोजति। भगवान ने एक रूप से भक्ति बहुत सरल बना दिया है। भगवान कह रहे हैं पत्रम तुलसी का पत्ता, पुष्पम फलम तोयम पानी, अगर तुम जल भी मुझे अर्पण करोगे, फूल फल तुलसी का पत्ता मैं स्वीकार करूंगा, पर इसके साथ एक शर्त है। वो क्या है? प्रेम और भक्ति के साथ। आप लोग पंखा चलाना चला सकते हो पर आवाज होगी, आवाज आती है ना पंखे से, बोल इसमें कि एयर कंडीशन है। तो भगवान कह रहे हैं प्रेम और भक्ति के साथ अगर पत्रम पुष्पम फलम तो ये अर्पण करोगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो भगवान कह रहे मेरा भक्त बनो, भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो माया की सेवा करना पड़ेगा। वैदिक शास्त्र का मुख्य मूल संदेश क्या है? कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। वेद शास्त्र कहे संबंध आविधेय प्रयोजन चैतन्य चरितमृत में कहा गया है। वैदिक साहित्य का मूल संदेश क्या है? वेद शास्त्र का संबंध, भगवान के साथ कैसे संबंध स्थापित कर सकते हो। परसों आप भक्तों ने सनातन गोस्वामी का तीर्थभाव तिथि मनाई थी, तो सनातन गोस्वामी रूपक गोस्वामी के बड़े भाई थे, पांच साल बड़े थे उनसे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने दोनों रूप और सनातन को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी, जिसके विषय में आप मध्य लीला के 22वें अध्याय में ज्ञान प्राप्त करते हो। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को क्या कहा? ब्रह्मांड ब्रह्मीते कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण भक्त कृपाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति का बीज है ये हमें प्राप्त होता है अनेक जन्म मृत्यु के पश्चात। इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा है हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत में भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। जैसे कि मान लो आपको कुछ बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए आपको जो भी कीमत भरनी पड़े आप तैयार रहते हो। तो उसी प्रकार रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी त्यागना पड़े त्यागो, कंजूसी मत करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये भक्ति का तो बीज है, अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद प्राप्त होता है। तो ये बीज उगेगा कैसे? क्या कहा महाप्रभु ने? उगेगा श्रवणम कीर्तनम के माध्यम के द्वारा। जैसे कि साधारण स्थिति में बीज उगता है जब आप पानी पिलाते हो, पानी नहीं पिलाओगे तो उगेगा नहीं। जैसे भगवान कहते हैं गीता के तीसरे अध्याय में अन्न की प्राप्ति कैसे होती है? वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति कैसे होती है? यज्ञ के कारण। यज्ञ का अर्थ क्या है? धर्म का पालन। आज आप विश्व में देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई स्थानों में बारिश नहीं आ रही, कई स्थानों में बहुत बारिश आ रही है, कई स्थानों में बहुत गर्मी है। जैसे इस समय अमेरिका में यह साल आधे से ज्यादा देश में पानी नहीं आया, ड्राउट है आधे से ज्यादा। आज सब कैलिफोर्निया का सुनते हो, कैलिफोर्निया में ऐसी स्थिति है कि आप अपने बगीचे में पानी भी नहीं डाल सकते शाम के समय। पानी डालना है तो रात के 2 बजे के बाद डालना पड़ेगा क्योंकि पानी की काफी कमी है। तो आप कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आओ, हाँ, जैसे एक रूप से देखा जाए अमेरिका को वर्ल्ड लीडर माना जाता है टेक्नोलॉजी में, तो कहाँ है टेक्नोलॉजी कि आप वर्षा पैदा कर सकते हो? ये तो आप निर्भर हो भगवान की कृपा पर, है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि भक्ति का बीज उगेगा श्रवणम कीर्तनम से। अगर आप यज्ञ नहीं करोगे तो समाज की आवश्यकताएं भी आपको प्राप्त नहीं होंगी। जैसे आप देखते हो एक तरफ से समाज की आवश्यकताएं कठिनाई से प्राप्त हो रही है, आजकल पानी भी कठिनाई से मिल रहा है। कारण क्या है? पाप का बोझ पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। माया दक्षिण प्रकृति सुते साक्षराक्षर, भगवान कह रहे हैं प्रकृति किसके इशारे से चलती है? आप भागवत में पढ़ते हो महाज्वेना की कथा। महाज्वेना हजारों साल पूर्व राजा थे, पर बड़े नास्तिक विचार के, और उन्होंने समाज में हर प्रकार का यज्ञ रुकवा दिया था, ब्राह्मणों के घरों को जला दिया, अपने सिपाहियों को भेजा और कहा ब्राह्मणों के घरों को जला दो, और ब्राह्मणों को बुलाकर डांटा। उन्होंने कहा तुम तो वैश्य हो, क्यों? मैं तुम्हें पाल रहा हूं और मेरी पूजा की बजाय तुम विष्णु की पूजा कर रहे हो, मेरी पूजा करो। तो उन्होंने हर प्रकार का यज्ञ समाज में रुकवा दिया था, जिसके कारण समाज की जो आवश्यकताएं हैं सब समाप्त हो गई। जो सागर थे वो सूख गए, इंद्र देवता ने वर्षा बंद कर दी, वो पेड़ जो थे उनमें फल नहीं, और पूरी प्रजा अत्यंत दुखी हो गई थी। और ब्राह्मणों ने देखा कि प्रजा दुखी है, जो असली ब्राह्मण है वो समाज के शुभ चिंतक है, और फिर ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दिया, और फिर उनके पुत्र पृथुमराज का शासन आरंभ हुआ। जब पृथुमराज का शासन आरंभ हुआ, प्रजा ने कहा आप राजा हो, आपका कर्तव्य है कि आप हमारी आवश्यकता को पूरा करो। पृथुमराज भगवान के अवतार थे, हमारे शास्त्रों के अनुसार अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, उनके अनेक विभाग हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार। तो पृथ्वीराज जी अवतार थे, पर वो प्रकट हुए थे भक्त के रूप में, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण है अन्य, पर चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए किस रूप में? भक्त में रूप में। किस लिए प्रकट हुए हैं? पतितों का उद्धार करने के लिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं सब अवतारों में आप जो हो सबसे दया दयालु अवतार हो। तो पृथ्वीराज ने एक प्रजा से कहा हालांकि मैं राजा हूं मेरे में कुछ शक्ति नहीं, अगर आप सब परम भगवान का गुणगान करोगे तो हर प्रकार की आवश्यकता प्राप्त होगी। और प्रजा ने भगवान का गुणगान किया और सब प्रकार की आवश्यकता भी प्राप्त हो गई। आप भागवत में देखते हो कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य के समय हर प्रकार की आवश्यकता थी, क्यों? कारण क्या था? पूरी प्रजा भगवान के उपासक थी। आज भी आप राम राज्य के सुख का स्मरण करते हो, राम राज्य के समय थोड़ा पूरी प्रजा जो थी वो भगवान राम की उपासक थी। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि भक्ति का बीज उगेगा अगर आप ध्यान से श्रवणम कीर्तनम करोगे। आगे उन्होंने कहा ये देख सावधान रहना कि भक्ति का बगीचा नष्ट नहीं हो जाए। और इस विषय पर उन्होंने कहा कि हमें साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है साधु संगत सर्व शास्त्र हया लाभ मात्र साधु संगत सर्व सिद्धि हया। लाभ मात्र का अर्थ है एक सेकंड का चौदवा हिस्सा। अगर आपको थोड़ एक पल के लिए भी शुद्ध भक्त की संगत मिल जाए तो आपका सुधार हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी का कि साधु संगत का लाभ उठाओ। आगे चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान के शरणगत होने के विषय में सनातन गोस्वामी को कहा सबसे पहले जो भक्ति के लिए अनुकूल है उस कार्य को स्वीकार करो, दूसरा जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। और अगर आपके मन में शक हो क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है तो क्या है उपाय, साधु गुरु शास्त्रों का सहयोग लो। रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं रूप रघुनाथ पदे कही बेअकूति कबे वह हमा हेरा वो से युगल फिरी थी। कब वो शुद्ध न आएगा जब मुझे रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। रूप गोस्वामी जी ने श्री उपदेश रमृत नाम के ग्रंथ में कहा है ददाति प्रतिघ्रनाति गुह्य मकृति प्रचति भुनक्ते भुजायते चैव सद्विधि प्रीति लक्षणम। कहते हैं छह प्रकार के संबंध भक्त में होना चाहिए। ददाति प्रतिघ्रनाति मन के विचारों को सुनाओ शिक्षा लो दान दो दान लो प्रसाद खिलाओ और प्रसाद स्वीकार करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मूल भाव क्या है, ये छह प्रकार के संबंधों को स्थापित करने में सहयोग देना। तो साधु संगत का लाभ उठाओ। साधु संगत प्राप्त करने के अनेक साधन हैं, जैसे कि परसों इतवार को या भक्ति वृक्षा कार्यक्रम का महासम्मेलन हुआ था, बड़ी महामेलन हुआ था। तो उसमें भक्ति वृक्ष कार्यक्रम आज दिल्ली के कोने कोने में हो रहा है, इसके अलावा नाम हाथ कार्यक्रम कोने कोने में हो रहे हैं, उसके अलावा भगवान की कृपा से कोने कोने में लगभग मंदिर है, कोई नोएडा में है, पंजाबी बाग है, इधर है, इन सबका आप लाभ उठाइए। और साथ में ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ है इनको भी पढ़िए और साधु संगत द्वारा भक्ति का जो बगीचा है उसे आप बचा सकते। आगे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जो अनुकूल है स्वीकार करो, प्रतिकूल है उसे त्यागो। और आगे ये स्वीकार करो कि कृष्ण भगवान ही आपके सुरक्षक है, कोई देवता देवी नहीं, कोई भौतिक सुविधा नहीं, कृष्ण भगवान ही आपके असली सुरक्षक है। आगे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा नम्रता के साथ, इस विषय पर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है सिद्धांत भी सुनी चेना सरोवर अपी साई सुना अमानी न मना दीना कीर्तन अली सलाह। अगर आप यह हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश क्या है सिद्धांत भी सुनी चेना निम्रता के साथ, और उस स्थिति में आप हरि का नाम जो है सदा कर सकोगे। तो भगवान यह कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। तो भक्त बनने का अर्थ क्या है, भक्त बनने का अर्थ है भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना है कि नहीं, बिकम माई डिवोटी मेरा भक्त बनो। आगे भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। हम भगवान के उपासना करते हैं उनके आचार विग्रह के रूप में। भगवान अपने आचार विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और हम सबको उनकी सेवा में जुड़ने का मौका देते हैं। हम जब भगवान की आचार विग्रह का दर्शन लेते हैं तो प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वीकार करते हैं आचार विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान आचार विग्रह के रूप में क्यों प्रकट होते हैं? हमें उनकी सेवा में जुड़ने का मौका देते हैं। कई लोग सोचते हैं जब भगवान की मूर्ति को देखते हैं, अरे ये तो मूर्ति पूजा है, भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं इनमें। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। अगर हम इस विग्रह को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे तो ये मूर्तियां आपसे बोलेंगी भी। भगवान आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं किस लिए? हमें सेवा का मौका देने के लिए। आप साक्षी गोपाल की कथा जानते हो, किस प्रकार गोपाल विग्रह साक्षी बने थे। माधवेन्द्र पुरी उड़ीसा में गए थे उनके विग्रह के लिए चंदन लाने के लिए। तो वो रेगुना में पहुंचे जहां की एक बड़ा प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि उस मंदिर में जो खीर बनती है भगवान के लिए उसका खास नाम है अमृत केली, जो अमृत स्वर्ग में बनता है। तो माधवेन्द्र पुरी के मन में यह विचार था कि अगर किसी प्रकार से मुझे खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं गोवर्धन में लौटकर अपने गोपाल के लिए भी इस प्रकार की खीर बना सकूं। पर अफसोस की बात है कि उनमें उनके मन में जब ये भावना प्रकट हुई उस समय भगवान को भोग लग रहा था, क्योंकि भोग लग रहा था। माधवेन्द्र पुरी को जब पता लगा और उनके मन में ये भावना आई, माधवेन्द्र पुरी का एक लक्षण ये था वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अगर किसी ने उन्हें कुछ दूध दे दिया, कुछ खाने के लिए दे दिया तो स्वीकार करते थे, अगर किसी ने कुछ दिया नहीं तो भूखे सो जाते थे। तो माधवेन्द्र पुरी चखे बिना उस स्थान छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके हृदय में भावना प्रकट हुई थी जब भगवान को भोग लग रहा था। भगवान ने क्या किया? भगवान ने वो खीर के प्याले को चुराकर पर्दे के पीछे छुपा दिया और उस दिन रात को उस मंदिर के पुजारी को सपने में कहा कि मैंने मेरे प्रसिद्ध भक्त माधवेन्द्र पुरी की खुशी के लिए एक खीर का प्याला छुपाकर पर्दे के पीछे रखा है, तुम इसे लेकर बाजार में जाना इस स्थान में जहां की आपको माधवेन्द्र पुरी नाम का भक्त प्राप्त होगा, उसे ये खीर का प्याला दे देना। जब पुजारी को ये सपना आया तो विश्वास नहीं कर पाए, क्या सचमुच भगवान ने खीर का प्याला चुराया होगा, ये कैसे संभव है। तो स्नान करके गए भगवान को जगाने के लिए। जैसे आप लोग मंगल आरती में आते हो 4:30 बजे के ऊपर जो पुजारी है वो तो 4:45 बजे जाते हैं अंदर जगाने के लिए भगवान को। तो उसने भगवान को जगाकर वो खीर का प्याला लेकर आए, उसने देखा सचमुच खीर का प्याला एक था पर्दे के पीछे। तो भगवान ये जो विग्रह है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये पत्थर के विग्रह है, यहां स्वयं भगवान है। भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। जो पूजा करो का अर्थ है उनकी उपासना करो शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार, और अगर आप श्रद्धा से करोगे तो फिर भगवान जो है आपसे बात भी करेंगे, आपको बुद्धि भी देंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। हम प्रणाम करते हैं सदा हरि नाम के उच्चारण के द्वारा, और हरि नाम का उच्चारण आप दिन रात कर सकते हो और थकोगे नहीं। तो भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, तो आप भगवान के आचार्य वगैरह की पूजा कर सकते हो मंदिर में आकर। कईयों के घरों में भी गौर निताई का विग्रह रहता है और कईयों के घरों में भगवान के विग्रह की तस्वीर है। भगवान कह रहे हैं मेरी उपासना करो, मेरा भक्त बनो, और अगर ये सब करोगे तो क्या होगा, बिना शंका के मेरे धाम आओगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपको जीवन को इस रूप से चलाना चाहिए कि आप सदा भगवान का स्मरण कर सको, और अगर आप सुबह के समय जाकर ध्यान पूर्वक होकर जाप करोगे तो आप देखोगे कि स्मरण करना आसान रहेगा। इसलिए जब प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। उन्होंने ये नहीं कहा विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम, उन्होंने कहा पहले सुनो जाप करो फिर मेरा स्मरण करो। तो हम सबको इसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक नियम दिए भक्ति संबंधित, पर उनका ये कहना है कि इन सब नियमों का मूल संदेश क्या है कि हम सदा कृष्ण का स्मरण करें और कभी कृष्ण को भूले नहीं, और अगर ये प्रयास रहेगा तो भगवान अवश्य की सहयोग देंगे। भगवान कहते हैं जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी भी है तो मैं क्या करता हूँ उसे दूर कर देता हूँ। तो आप सब चाहे मंदिर में रह रहे हो या घर में रह रहे हो, सब इसका प्रयास कीजिए। आपने श्लोक पहले भी सुना होगा पर बार बार सुनने से ही ये विचार हृदय में बैठता है। इसलिए भागवत में भी भगवान सूतक गोस्वामी कहते हैं न सप्रेषु अवधरेषु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भावती न सके। ध्यान पूर्वक होकर भागवतम कभी सुनोगे तो फिर भक्ति की भावना हृदय में स्थापित होगी। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम इस संदेश को स्वीकार करें और इसका पालन करें, और अगर प्रयास करेंगे तो अवश्य ही इस मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, 5-10 मिनट प्रश्नों के लिए छोड़ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमें अगले साल तक ये ऑडिटोरियम को एयर कंडीशन करा दे। आप लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही? एक दिन आएगा जब ये बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि आप खुद ही कहोगे पंखे बंद करो। बिजली का बिल हर साल बढ़ते जा रहा है कि घट रहा है? और सब चिल्ला रहे हैं ना, सब जगह अमेरिका में भी लोग इतना चिल्ला रहे हैं क्योंकि बिजली का बिल बढ़ गया वहाँ पे। अच्छा पूछिए
महाराज, जो मन है उसको श्रवण जैसे चैंटिंग करते समय उसको कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे और ज्यादा ध्यान लग सके?
जाप करते समय हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन रहना चाहिए सुनने में, ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसके अनेक लाभ होंगे, और अगर आप जप कर रहे हो तो ध्यान पूर्वक नहीं ध्यान से सुन रहे नहीं, इसका फिर पूरा लाभ नहीं पहुंचेगा। लाभ पहुंचेगा पर पूरा लाभ नहीं पहुंचेगा। हाँ पूछिए आप। आप लोगों देर तो नहीं हो रही, परेशान तो नहीं है ना, बहुत परेशान है।
महाराज जी, जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने महाभारत के समय में पूरे श्लोक सुनाए थे इतने 45 मिनट्स में, इस श्लोक को फिर गीता के रूप में किसने लिखा इसको?
ये भगवान ने गीता के श्लोकों को सुनाया था
जी।
ये गीता जो है महाभारत में है, वही श्लोक भगवान ने ही सुनाए थे। कल पंजाबी बाग में हरीश सूरी इज कमिंग फॉर लेक्चर, तो जो पंजाबी बाग के भक्त हैं कल सुबह यहाँ नहीं आना, क्योंकि हमारे बड़े पुराने भक्त हैं हरीश सूरी प्रभु, वो भगवतम क्लास देने आ रहे हैं। यस, क्या भक्ति में ऊपर नीचे? एक दिन आप बहुत उत्साहित हो और अगले दिन सोचते हो कहाँ फंस गए हम। तो ये बात सच है, कभी कभी हम बड़े उत्साहित होते हैं, कभी कभी सोचते हैं कहाँ पहुंच गए, कहाँ फंस गए। तो इस विषय में भागवतम में 4th स्कंद में इस विषय का वर्णन किया जाता है। और नारद मुनि जी कहते हैं प्रचेता से, कई बार आप किसी बीमारी का इलाज करा रहे हो और आप दवाई को लेना जब जल्दी बंद कर देते हो तो क्या होता है? रिलैप्स हो जाता है कि नहीं? तो क्या होता है, कई बार हम बड़े ध्यान पूर्वक होकर जाप करते हैं, साधना रखते हैं, तो कई बार हम ढीले हो जाते हैं। जब आप साधना में ढीले हो जाते हो तो आपका उत्साह भी ढीला हो जाता है, जब आप साधना में कड़क रहते हो तो आपका उत्साह भी अच्छा रहता है। अगर हम जप वगैरह नहीं करें, भक्तों की संगत में नहीं रहें, तो भक्ति के विचार की बजाय माया विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अच्छा साधना रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप, जैसे आप सब तो घरों में रहते हो, घर में रहते हो तो भी आपको अच्छी साधना रखनी चाहिए। ठीक समय में उठो, सुबह जाप करो, दफ्तर जाने से पहले जितना हो सकता है, और किताबों को भी पढ़ो। जो भक्त मंदिर में रहते हैं उनके लिए ज्यादा एहसान है भगवतम भगवत गीता क्लास में आना, पर आप सब जो घरों में रहते हो ऐसा शेड्यूल बनाओ कि आप रोज थोड़ी गीता और भागवत भी पढ़ सको। ओके, हाँ हाँ बोलिए गोपेश्वर।
हरे कृष्ण गुरु महाराज, अगर भक्तों से तो थोड़ा अटैचमेंट बढ़ रहा हो मगर भौतिक आसक्ति वैसी की वैसी बने रहे तो उसको कैसे?
अगर क्या,
भक्तों से तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अटैचमेंट बढ़ रहा है, बट भौतिक आसक्ति वैसी की वैसी बनी हुई है तो उसको कैसे क्या करना चाहिए गुरु महाराज?
अगर आप भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ा रहे हो, हरि नाम के प्रति बढ़ा रहे हो, तो भौतिक आसक्ति घटते जाएगी जरूर। कई बार कारण ये होता है कि हम जप माला सावधानी से नहीं कर रहे, ध्यान पूर्वक होकर नहीं कर रहे। ये जप करना ध्यान से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप जानते हो हरि नाम का जाप 3 अलग परिस्थितियों में आप कर सकते हो। पहला है नाम अपराध, दूसरा है नाम वास, तीसरा है शुद्ध नाम। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि भगवान उनके नामों में कोई अंतर नहीं। जितने ध्यान से आप जाप करोगे उतना अधिक लाभ आएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतने सालों से जाप कर रहे हैं पर अभी भी बहुत ही आसक्ति है, दवाई में कुछ कमी नहीं है, मरीज में कमी है। दवाई इज गारंटीड। ठाकुर भक्तिनाथ कहते हैं कि मैं दवाई लाया हूं तुम्हारी बीमारी को दूर करने के लिए। जीव जागो प्रार्थना में कहते हैं ना, जीव जागो गोरचंद्र बोले, कहते मैं दवाई लाया हूं तुम्हारी बीमारी को दूर करने के लिए। तो ये दवाई तो है, इसका हमें उपयोग ठीक रूप से करना है। सब भक्तों का प्रयास है नचे कि क्वालिटी ऑफ चैंटिंग हम रोज बढ़ाए। हाँ या भक्तों के संग का, भक्तों की संगत के विषय में नारद मुनि जी ने इस प्रकार से कहा है कि आप भक्तों की संगत तीन लेवल्स में प्राप्त कर सकते हो। एक है संगत उन भक्तों की जो आपसे ज्यादा एडवांस्ड है, दूसरा है जो आपके बराबर है, तीसरा जो आपसे पीछे है। तो नारद मुनि जी कहते हैं जब आप उनसे मिलो जो जिनका आपसे कम ज्ञान है तो उनके प्रति हमें दया की भावना प्रकट करनी चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए सहनशील होकर। अगर आप अपनी समानता के समान अपने बराबर के भक्तों को मिलो तो उनसे मित्रता बनाओ, उनसे कृष्ण कथा की चर्चा करो। और जब आप उन्हें मिलो जो आपसे ज्यादा एडवांस्ड हैं तो आपको प्रसन्न होकर उनसे सुनना चाहिए, पूछो और सुनो। तो जब भक्तों की संगत की चर्चा की जाती है तो हमें भूलना नहीं चाहिए आपसे ज्यादा एडवांस भक्त मिल सकते हैं, आपके बराबर के और आपसे कम एडवांस, है कि नहीं। तो अलग अलग एसोसिएशन में अलग अलग प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। जब आप किसी एडवांस भक्त को मिल रहे हो तो उनसे सुनो, प्रश्न पूछो, पर उत्तर का लाभ केवल जब है जब उसका लाभ उठाओगे आप, ठीक है। ओके लास्ट क्वेश्चन। ओके सो हिज क्वेश्चन इज हाउ डू सी मिसफॉर्च्यून ऑफ मटेरियल लाइफ एज कृष्णा अरेंजमेंट। They need not necessarily be Krishna's arrangement, and misfortunes in material life can also be the result of your own karmic reaction. I mean, if some misfortune happens, you don't necessarily say, Krishna did this because he didn't want me to get attached to Maya. That could be a reason, but it could also be that you were not entitled to the fruits because of your karma. So Krishna kept it away from you. And when Krishna sees that someone's very sincere, then he creates a situation by which you surrender to him. Okay? Okay, last question. Kaise? चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, शरण लो गुरु की, दीक्षा लो, सेवा करो श्रद्धा और प्रेम से, सेवा, फिर पूछो मुझे क्या करना त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और फिर जो त्यागना पड़े वो त्यागो। तो गुरु के प्रति श्रद्धा जब बढ़ेगी जब आप गुरु के आदेश का पालन नहीं करोगे, जब पालन नहीं करोगे श्रद्धा और भक्ति के साथ तो श्रद्धा केवल नहीं बढ़ेगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक प्रार्थना में कहा कि फूल चढ़ाने के बजाय गुरु की वाणी का पालन करो। ओके हरे कृष्ण। Should we stop now? It's a little late. Huh?